एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम हुआ हाशू की काफी चर्चित और प्रशंसित संस्मरण स्टे ट्रू पर आधारित स्रोतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये किताब 2022 में आई और आते ही मतलब इसने धूम मचा दी।
हाँ बिल्कुल, इसे संस्मरण के लिए 2023 का पुलित्जर पुरस्कार मिला और 2022 का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड भी। लेकिन अवार्ड से भी ज्यादा ये कहानी लोगों से जुड़ी है।
सही कहा। तो क्या है इस कहानी में ऐसा खास, स्रोत क्या बताते हैं?
देखिए, पहली नज़र में तो ये एक बहुत गहरी दोस्ती की कहानी लगती है। एक ऐसी दोस्ती जो अचानक एक बेमतलब सी हिंसा की वजह से खत्म हो जाती है। पर ये किताब उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये यादों के बारे में है, पहचान कैसे बनती है, हम खुद को कैसे गढ़ते हैं उन तमाम सांस्कृतिक चीजों से, जैसे संगीत, फैशन, किताबें।
अच्छा।
और कहानी का ज्यादातर हिस्सा 1990 के दशक के बीच का है, जब लेखक बर्कले में कॉलेज में पढ़ रहे थे।
बिल्कुल, स्रोत भी यही कहते हैं कि ये सिर्फ दो दोस्तों की कहानी नहीं, बल्कि ये युवावस्था की उस नाजुक तीव्र एहसास को पकड़ने की कोशिश है। एक तरह का शोक गीत है ये।
हाँ, बहुत खूबसूरती से लिखा गया है। ये अपनेपन की तलाश की कहानी है, खुद को ढूंढने की वो थोड़ी मुश्किल सी प्रक्रिया।
और कैसे एक भयानक घटना जिंदगी का रुख ही मोड़ देती है।
सही, तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और हुआसू की इस यात्रा को इन स्रोतों के जरिए समझते हैं।
तो शुरुआत करते हैं हुआसू के बचपन से। स्रोत बताते हैं कि वो क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया में पले पढ़े, मतलब सिलिकॉन वैली का एक आम सा उपनगरीय इलाका।
हाँ, और उनके माता पिता ताइवान से आए अप्रवासी थे, तो उनकी पहचान में ये दोनों दुनियाएं थीं। एक तरफ वो टिपिकल अमेरिकन माहौल, दूसरी तरफ घर की ताइवानी विरासत।
ये दिलचस्प तालमेल रहा होगा। पिता के साथ उनके रिश्ते के बारे में स्रोत क्या कहते हैं? वो तो अक्सर ताइवान में रहते थे काम के सिलसिले में।
हाँ, ये बात अहम है। दूरी थी लेकिन उनका रिश्ता बना रहा, फैक्स मशीन के जरिए। सोचिए, पिता वहां से लेख, हाथ से लिखे नोट्स, अपने विचार फैक्स करते थे।
फैक्स मशीन से? वाह।
हाँ, और इसी लगातार के संवाद ने, भले ही वो कागज पर था, हुआसू में चीजों को सहेजने की, मतलब आर्काइव करने की और क्यूरेट करने की, ध्यान से चुन कर रखने की एक गहरी आदत डाली।
ये आदत तो बाद में उनके काम भी आई होगी।
बिल्कुल, ये सिर्फ चीजें जमा करना नहीं था, ये रिश्ते को जिंदा रखने का एक तरीका था। यही बाद में उनके लेखन की नींव बना।
फिर आई किशोरावस्था, टीनेज ईयर्स। स्रोत बताते हैं कि तब सू ने एक बिल्कुल अलग पहचान गढ़ी, इंडी रॉक, स्केटबोर्डिंग, वैकल्पिक जीन।
हाँ, जीन, वो छोटे हाथ से बने या फोटोकॉपी वाले प्रकाशन।
हाँ भाई, और इन सब के साथ एक आयरोनिक डिटैचमेंट वाला एटीट्यूड।
सही, ऐसा लगता है जैसे वो खुद को उन चीजों से परिभाषित कर रहे थे जो वो नहीं थे, मतलब जो मुख्य धारा का हिस्सा नहीं था। उससे खुद को अलग रखकर शायद थोड़ा ज्यादा कूल या समझदार महसूस करना।
हाँ, ये उस उम्र में होता है अक्सर, अपनी पसंद की चीजों से अपनी पहचान बनाना।
बिल्कुल, ये एक तरह का कवच था जिसे पहनकर वो 1990s के मध्य में यूसी बर्कले पहुंचे। दुनिया उनके लिए काफी हद तक दो हिस्सों में बटी थी, असली बनाम नकली, दिलचस्प बनाम आम।
और बर्कले में ही उनकी मुलाकात हुई केन इशिदा से। केन स्रोतों के मुताबिक हर उस चीज का प्रतीक थे जिसे सू और उनके दोस्त शायद तुच्छ समझते थे।
हाँ बिल्कुल, सैन डियेगो से आया एक जापानी अमेरिकी लड़का, फ्रेटर्निटी का मेंबर, डेव मैथ्यूज बैंड और पर्ल जैम जैसे पॉपुलर बैंड्स का फैन, और एबरक्रॉम्बी एंड फिच जैसे मेनस्ट्रीम ब्रांड के कपड़े पहनने वाला।
हुआ सू की परिभाषा के हिसाब से तो एकदम आम।
हाँ, और शुरुआत में सू का रवैया वैसा ही था, थोड़ा तिरस्कार भरा, लेकिन कहानी यहीं पलटती है।
कैसे?
चेन की जो ईमानदारी थी, जो बिना किसी बनावट के खुलापन और गर्मजोशी थी, उसने धीरे धीरे सू के उस सख्त व्यंग्यात्मक कवच को तोड़ना शुरू कर दिया।
अच्छा।
केन सू के कल्चरल दिखावे से, उनकी कूलनेस से जरा भी प्रभावित नहीं थे। वो जैसे थे वैसे थे, बड़े सहज।
और फिर दोस्ती कैसे बढ़ी?
धीरे धीरे, देर रात केन की एक्यूरा इंटेग्रा में ड्राइव पर जाना, कैंपस की बेंच पर बैठकर सिगरेट पीना, घंटों बातें करना बिना किसी खास टॉपिक के।
ये वो पल होते हैं जहां दीवारें गिरती हैं।
सही कहा, इन्हीं पलों में शायद सू का वो रक्षात्मक रवैया कमजोर पड़ा। केन ने शायद अनजाने में ही सू की कूलनेस की बनी बनाई परिभाषाओं को चुनौती दी।
उनके मतभेद दोस्ती में रुकावट नहीं बने?
नहीं, बल्कि वो एक दूसरे के दायरे को बढ़ाने का जरिया बन गए। सू को एक ऐसी जगह मिली जहां वो अपनी असुरक्षाएं जाहिर कर सकते थे, उस कूल मुखौटे के पीछे का इंसान बाहर आ सकता था।
ये तो काफी गहरा रिश्ता बन गया था।
बहुत। उन्होंने भविष्य के प्लान भी साथ बनाने शुरू कर दिए थे, ग्रेजुएशन के बाद क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप पर जाने का सपना।
वाह।
हाँ, ये उनके साझा उम्मीदों का प्रतीक था। यहाँ तक कि उन्होंने साथ में सीनिक रूट्स नाम की एक पटकथा भी लिखनी शुरू कर दी थी।
लगता है जैसे सब कुछ सही दिशा में जा रहा था।
हाँ, ऐसा ही लग रहा था। दोस्ती गहरी हो रही थी, दोनों एक दूसरे से सीख रहे थे, भविष्य उज्ज्वल दिख रहा था। पर जैसा कि ये किताब हमें दिखाती है, जिंदगी हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती।
और यही कहानी का रुख बदलता है। हुआ सू की जिंदगी का जो निर्णायक मोड़ था वो कोई कामयाबी नहीं थी, बल्कि एक भयानक घटना थी।
हाँ, ये कोई पारंपरिक सफलता की कहानी नहीं है। जुलाई 1998 में कॉलेज का तीसरा साल खत्म होने के ठीक बाद केन एक पार्टी से लौट रहे थे। तभी एक कारजैकिंग की कोशिश हुई और हमलावरों ने गोली मारकर केन की हत्या कर दी।
हे भगवान।
ये एकदम अचानक बेमतलब की हिंसा थी, जिसका कोई तर्क नहीं था, कोई वजह नहीं। विश्लेषण, वो व्यंग्यात्मक दूरी, सब कुछ इस भयानक नुकसान के सामने बेकार साबित हुआ।
इस सदमे से वो कैसे उभरे?
उभरना शायद सही शब्द नहीं है, लेकिन इसी गहरे दुख और भ्रम के बीच उन्हें लिखने की एक तीव्र, एक अंदरूनी जरूरत महसूस हुई।
लिखने की?
हाँ, उन्होंने केन से जुड़ी हर याद, हर बातचीत, हर मजाक, दोस्ती का हर छोटा बड़ा पल लिखना शुरू कर दिया। ये उस वक्त कोई कला बनाने या महत्वाकांक्षा की बात नहीं थी।
तो फिर क्या था?
ये यादों को बचाने की कोशिश थी, अपने दोस्त को वक्त की धुंध में खोने से बचाने की एक हताश कोशिश। जैसे वो बचपन में पिता के भेजे फैट सहेजते थे, अब वो केन की यादों को शब्दों में सहेज रहे थे।
और यही लेखन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम बन गया।
बिल्कुल, ये उनका असली ब्रेक थ्रू था। दुनिया की नजर में शोहरत नहीं, बल्कि जिंदगी में एक मकसद मिलना, इस बेमतलब घटना में मतलब ढूंढने की कोशिश करना, जो कहा नहीं जा सकता उसे शब्दों में बयान करना, और अपने दोस्त की याद का सम्मान करना, ये उनकी जिंदगी का मिशन बन गया।
और स्टे ट्रू इसी कोशिश का नतीजा है।
हाँ, श्रोत बताते हैं कि संस्मरण का बाकी हिस्सा इसी त्रासदी के लंबे असर पर एक गहरा चिंतन है। सू ने पढ़ाई पूरी की, अकेडमिक बने, एक जाने माने सांस्कृतिक आलोचक बने, लेकिन केन की याद और उनकी मौत का दुख हमेशा उनके साथ रहा। स्टे ट्रू इसी 20 साल से भी ज्यादा लंबी जद्दोजहद का परिणाम है।
ये सफर वाकई जगजोड़ देने वाला है।
अगर हम उनके मूल दर्शन और मूल्यों की बात करें, तो इस त्रासदी ने उनमें गहरा बदलाव लाया। पहले वो व्यंग्यात्मक दूरी और एक तरह के सांस्कृतिक अभिजात्यवाद में यकीन रखते थे।
हाँ, कह सकते हैं।
पहचान उनके लिए एक चुनी हुई, क्यूरेट की गई चीज थी। आपकी पसंद नापसंद आपकी बुद्धिमत्ता दिखाती थी। दुनिया कूल बनाम अनकूल, असली बनाम नकली में बटी थी।
एक तरह का कवच।
बिल्कुल, लेकिन केन की हत्या ने ये कवच तोड़ दिया। इसने दिखाया कि व्यंग्य या दूरी जिंदगी की कठोर सच्चाइयों, खासकर मौत जैसी त्रासदी के सामने कितने बेमानी हैं।
तो फिर उनका नजरिया कैसे बदला?
इस घटना ने उन्हें जबरदस्ती ईमानदारी, अपनी कमजोरियों को मानने और जीवन की अनिश्चितताओं को अपनाने की तरफ धकेला। उन्होंने सीखा कि असली रिश्ते पसंद नापसंद के मेल पर नहीं, बल्कि साझा इंसानियत पर टिकते हैं।
ये बहुत बड़ा सबक है।
और किताब का टाइटल स्टे ट्रू, सच्चे रहो, इसके मायने भी उनके लिए बदल गए।
कैसे?
पहले क्या मतलब था और बाद में क्या हुआ?
युवा सू के लिए ये शायद पंक रॉक का नारा था, अपने ग्रुप, अपने उसूलों के प्रति सच्चे रहो। लेकिन बाद में ये एक गहरा सवाल बन गया, किसके प्रति सच्चे रहें? अपने पुराने मैं के प्रति, दोस्त की याद के प्रति, या उस इंसान के प्रति जो आप उसकी गैर मौजूदगी में बन गए हैं?
ये वाकई गहरा सवाल है।
हाँ।
इसका कोई आसान जवाब नहीं है। बिल्कुल नहीं। अंत में उनका दर्शन इसी बात पर आकर टिकता है कि रिश्तों का महत्व चीजों से ज्यादा है, जीवन नाजुक है और यादों को संभालना एक बड़ी जिम्मेदारी है।
चलिए अब उन खास मोड़ों की बात करते हैं जिन्होंने हुआ सू की जिंदगी बदल दी। तीन सबसे अहम मोड़। पहला तो जाहिर है केन इशिदा से मिलना।
हाँ, बर्कली में सू जो खुद को इंडी इंटेलेक्चुअल समझते थे, उनका केन से मिलना जो उस मुख्य धारा कल्चर का हिस्सा थे जिससे सू खुद को अलग रखते थे, ये मुलाकात एक चिंगारी की तरह थी।
इसने क्या बदला?
केन की सहजता ने सू को अपनी ही बनाई छवि की सीमाओं का एहसास कराया। उनकी दोस्ती ने सहानुभूति का पाठ पढ़ाया, दिखाया कि इंसानी रिश्ते पसंद नापसंद से कहीं आगे होते हैं।
दूसरा मोड़ तो जाहिर है सबसे दुखद था, केन इशिदा की हत्या जुलाई 1998 में।
हाँ, ये किताब की धुरी है। इसने सू की युवावस्था खत्म कर दी, दुनिया पर से उनका भरोसा तोड़ दिया। दुख के सदमे के आगे उनका सारा बौद्धिक ज्ञान बेकार हो गया। इसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी।
उन्हें अस्तित्व के गहरे सवालों से जूझना पड़ा।
बिल्कुल। और तीसरा अहम मोड़ था हत्या के फौरन बाद लिखना शुरू करना।
वो जो आपने बताया, यादों को सहेजना।
हाँ, उन शुरुआती दिनों में वो जो लिखने की जरूरत महसूस हुई, ये वो पल था जब हुआ सू सांस्कृतिक आलोचक, हुआ सू संस्मरणकार बने। लिखना उनके लिए जिंदा रहने और मतलब ढूंढने का जरिया बन गया।
ये मौत और यादों के धुंधलेपन को चुनौती देने का तरीका था।
सही कहा। इसी शुरुआती लेखन ने स्टेट ट्रू की नींव रखी, भले ही किताब आने में 2 दशक लग गए।
तो हुआ सू की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं?
स्रोत कई ऐसी बातें बताते हैं जो हम सबके जीवन से जुड़ती हैं। पहली तो यही कि पहचान कोई तयशुदा चीज नहीं है।
बिल्कुल, ये बनती बिगड़ती रहती है, खासकर रिश्तों में और अक्सर उन लोगों के साथ जो हमसे अलग होते हैं।
और दूसरी बात, हमारे जीवन की वो छोटी छोटी साधारण चीजें, मिक्सटेप, जीन, खत,
हाँ, या तस्वीरें, कोई पुराना टिकट,
ये सब अनमोल हैं। ये हमारे निजी इतिहास के दस्तावेज बन जाते हैं। ये समझने के लिए जरूरी है कि हम कौन थे और कैसे यहाँ तक पहुँचे।
आज के डिजिटल दौर में ये शायद और भी जरूरी है, जहाँ सब कुछ इतना क्षणिक लगता है।
सही बात है। ये उनके पिता वाले फैक्स की आदत से भी जुड़ता है ना, चीजों को सहेज कर रखना।
दुख को लेकर भी एक अलग नजरिया मिलता है, वो विनम्र मेहमान वाली बात।
हाँ, कि दुख कोई रुकावट नहीं जिसे पार करना है, बल्कि एक साथी है जिसके साथ जीना सीखना है। वो आपके अंदर बस जाता है और सब कुछ बदल देता है।
ये काफी गहरा विचार है।
ये कहानी हमें ऊपरी पसंद नापसंद से आगे देखने और इंसानी समानता को पहचानने के लिए भी कहती है। और हाँ, युवावस्था के अहंकार और असुरक्षाओं का सामना करने के बारे में भी। और आखिर में अचानक हुई हिंसा के सदमे और उसके असर पर एक बहुत मार्मिक चिंतन है।
तो इन सब बातों के बाद अगर हमें 3 मुख्य निष्कर्ष निकालने हों इस पूरी चर्चा से, तो वो क्या होंगे?
पहली एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि कह सकते हैं। वो जो कूल दिखने की कोशिश होती है, वो एक कवच हो सकता है, लेकिन असली ताकत ईमानदारी और रिश्तों की गहराई में है। बड़ा नुकसान हमें ज्यादा गहराई से महसूस करना सिखाता है, चाहे वो दर्दनाक ही क्यों ना हो। खुले दिल से जीना ज्यादा बहादुरी का काम है।
बिल्कुल। दूसरी क्या होगी?
दूसरी एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि, अपने जीवन के अनुभवों को, यादों को सहेजना, उनका संग्रह करना बहुत जरूरी है। हमारी जवानी की वो मामूली चीजें असल में हमारे बनने की कहानी के सबूत है। याद रखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। हम सब अपने जीवन के आर्काइविस्ट हैं।
हम सब अपने जीवन के पुरालेखपाल हैं। ये अच्छी बात कही। और तीसरी?
तीसरी एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि। सबसे ज्यादा बदलने वाली दोस्ती अक्सर उन लोगों से होती है जो हमसे एकदम अलग लगते हैं। वो हमारी सोच को चुनौती देते हैं, हमारा नजरिया बड़ा करते हैं और हमें खुद का बेहतर संस्करण बनने में मदद करते हैं। जैसे हुआ और केन की कहानी दिखाती है, हम तब ज्यादा सीखते हैं जब हमारी मान्यताओं को प्यार से चुनौती दी जाती है।
वो सू की कहानी वाकई हमें याद दिलाती है कि हमारे रिश्ते और हमारी यादें कितनी कीमती और नाजुक हैं। ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी की कहानी को कैसे सहेज रहे हैं और कौन से रिश्तों ने हमें वो शक्ल दी है जो आज हमारी है। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।